हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने ज्ञान के सोर्स, परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज के विषय में पढ़ा, जिसमें हमें बताया गया कि तीन तरीकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शास्त्र में कहते हैं कि अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो इस संसार में भी दुखी होना पड़ेगा और दूसरे संसार में भी आपको आने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ज्ञान के बगैर तो हमें रास्ता ही नहीं पता होगा ना किधर जाने का। जब रास्ता नहीं खबर होगी तो हम दूसरी जगह पर जा ही नहीं सकेंगे, इस इधर ही मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। तो अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता है और ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होता है, ज्ञान से सुख मिलता है। देखो, अब इस संसार में भी हम लोग देखें, अगर हम हमें थोड़ी अक्कल नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, हम इतनी तेज गर्मी हो रही हो और हमारे घर में एसी भी हो, लेकिन हम लोग, हमें पता नहीं होगा कि एसी ऑन करेंगे, उसके नीचे बैठेंगे तो हमें ठंडक मिलेगी, फिर गर्मी नहीं लगेगी, तो फिर क्या गर्मी में सड़ते रहेंगे। हमें जब तक पता नहीं होगा कि रिमोट उठाओ, एसी ऑन करो, बस इतना सा करना है और ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तो फिर गर्मी में सड़ते रहेंगे, एसी के होते हुए भी। अब इसी तरह से, अब कोई गलत व्यक्ति है, जैसे कोई इंसान है वो सही नहीं है, मतलब अच्छा विचार नहीं रखता है, और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो उसका कैसा इंसान है, उससे मित्रता कर लेंगे, उससे दोस्ती करेंगे तो क्या होगा? अगर हमें अज्ञान है, हम उसके विषय में नहीं जानते हैं, उससे दोस्ती हो जाएगी तो हमारे दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर हम ज्ञान है कि इंसान सही नहीं है, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम दुखी नहीं होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई बीमार हो जाता है और वो गलत डॉक्टर के पास चला जाता है, उसे पता नहीं है कि डॉक्टर सही है या गलत है, हो सकता है कंपाउंडर हो और पानी का इंजेक्शन लगा रहा है बार बार, और बीमारी तो दूर नहीं होगी, तो फिर हमें दुखी होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर गलत टीचर के हाथ में लग गए, यानी हमें ज्ञान नहीं है कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा है, तो फिर हमें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा का सारा रॉन्ग पढ़ाएगा और एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो पता चल गया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें दुखी होना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पिछले 200 सालों से हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। देखिए, अगर 200 साल पीछे जाएं तो बहुत ही, इतना ज्यादा इन्वेंशंस नहीं थी, ना टीवी था, ना एलसीडी थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, और ना माइक था, ना मोबाइल थी, ना कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था। तो इतना सारा ज्ञान अर्जित किया यहाँ पर, तो इस स्टेटमेंट से तो हमें ये पता चला ज्ञान प्राप्त करने से सुख मिलता है। लेकिन इतना सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद भी मनुष्य का दुख तो दूर नहीं हुआ है। देखो, अब इतने पिछले 200 सालों में ज्ञान बढ़ा है या कम हुआ है? ज्ञान बढ़ा है ना, और दुख बढ़ा है या कम हुआ है? बेशक आप बोलो या ना बोलो, दुख भी बढ़ा है। तो अगर ज्ञान हासिल करने से दुख कम होता है तो फिर ये ज्ञान कैसा है जिसको हासिल करने से दुख भी बढ़ा है? इसका मतलब है इस ज्ञान में कोई ना कोई कमी है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने पूछा था कि ज्ञान हासिल करने के कितने सोर्स हैं। तो ज्ञान हासिल करने के देयर आर थ्री सोर्स ऑफ नॉलेज, कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज कितने हैं? थ्री हैं। उनमें से कंप्लीट क्या है और इनकम्प्लीट क्या है, उस बात की थी कल हम लोगों ने। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ, कि हम देख के ज्ञान हासिल करें, जो दिखाई दे रहा है बस वही सत्य है, जैसे साइंस कहती है जो नजर आता है वही सत्य है। लेकिन आत्मा को नहीं देख सकती तो वो आत्मा को मानती भी नहीं, परमात्मा को नहीं देख सकती तो मानती भी नहीं है इस। और दूसरा, अब लेकिन क्योंकि हम देखते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने इन सेंसेस के द्वारा, और सेंस कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर चार दोष मैंने आपको बताया कि वो मोहग्रस्त होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं और गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, इसलिए उनके जरिए हासिल किया हुआ ज्ञान कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां खुद ही कंप्लीट नहीं है तो अपने जरिए से हासिल करने वाला ज्ञान कैसे कंप्लीट हो सकता है। और दूसरा था अनुमान प्रमाण, स्पेक्युलेट प्रूफ, यानी कि लॉजिकल इन्फेरेंस। हम पहले अपनी आंखों से या अपने इंद्रियों से देखें और फिर उसके ऊपर जजमेंट करें, एस्टिमेट लगाएं कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये अनुमान लगाना भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। तो आखिर में हमारे पास एकमात्र प्रमाण बचता है जो कि कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, वो है शब्द प्रमाण यानी साउंड प्रूफ जो होता है शास्त्र में लिखा वही परफेक्ट है, क्योंकि उस पर यकीन करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने कल ये वाली चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी। और शब्द प्रमाण जो है वो सबसे पहले क्या है, वेद। जैसे भगवान ने हमें बनाया उसी तरह से भगवान ने वेद भी बना दिया, और वेद पूर्ण है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल पूर्ण है। इस चीज को मैंने कल साबित किया कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें वेद में लिखी हुई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता साइंस उसी को वापस से रिसर्च करके बता रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो वेद में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हमने पढ़ा कि वेद जो है वो बहुत बहुत मात्रा में हमारे पास हो गए थे, और उसके बाद एक समय ऐसा है, देखो जो हो रहा होता है कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की मर्जी से हो रहा होता है, कृष्ण की मर्जी के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। अब भगवान जानते थे कि मनुष्य मात्र जब कलयुग के प्राणी आएंगे तो ये सब नहीं पढ़ सकेंगे इतना सब, तो भगवान ने क्या किया, इतने सारे वेदों को गौ का रूप दिया और फिर दुग्धो गोपाल नंदना, और खुद जो है वो ग्वाले बनकर उस गौ को दोहा, और उसमें से जो दूध निकला है ना, दुग्धम गीतामृतम महत, तो ये जो दूध है वो श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद, जैसे मैंने आपको कल बताया, अब हमारे पास बहुत बहुत मात्रा में शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, सिकंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, राह, मत्स्य, कौर्म और ब्रह्मांड पुराण, उसके बाद उप पुराण है, यानी कि पुराणों को समझने के लिए उप पुराण, आदि आदि उप पुराण, नरसिंह, सिकंद, शुद्र, शुद्रम, कपिल, नारद, वामन, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, सांब, सूर, पाराशर, मारीच और भास्कर, उसके उप पुराणों के बाद भी उप पुराण है, उनको समझाने के लिए बृहद नारद्य पुराण, आदित्य, मानव, कूर्म, नंदेश्वर, भगवत, विशिष्ट, भृगु, इन्होंने सबने अपनी अपनी, उसके बाद स्मृतियां हैं, जो जो स्मृतियां जैसे जिन्होंने जिन्होंने याद की थी, जो जो शिक्षाएं मिली हैं उनको लिखने, जैसे दक्ष स्मृति, समर्थ मनो, यजना विल्क और विष्णु, गौतम, यम, अंगरा, विशिष्ट, शानायब, ये सब स्मृतियां। उसके बाद आपको बताऊं मैं, गीता भी एक नहीं है, बहुत सारी गीताएं हैं, जैसे शंपादक गीता, मन की गीता, बोध गीता, पाराशर गीता, हरित गीता, वातर गीता, हंस गीता, विचक्षण गीता, नारद गीता, व्यास गीता, अजगर गीता, श्रखाल गीता, खनक गीता, पंगला गीता, भृगु गीता, अनुगीता, उद्धव गीता, अद्भुत गीता, विराट गीता, ब्रह्म गीता, ईश्वर गीता, कपिल गीता, गणेश गीता, देवी गीता, उत्तर गीता, पांडव गीता, बक्षु गीता, यम गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, सत्य गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, विद्या गीता, सूत गीता, सूर्य गीता, जनक गीता, रघु गीता, विशिष्ट गीता, जीवन गीता, नाहुष गीता, सिद्ध गीता, प्रपन्न गीता, काम गीता और अष्टाविक्र गीता, अष्टावक्र गीता, ये सारी बहुत सारी गीता, उपनिषद, श्रीमद भगवत भागवतम, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, इन सबको मिलाकर बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो उठता ही है कि दूसरे जितने भी मजहब हैं, हम क्योंकि अब कंपेयर करते हैं ना, मुसलमानों के पास एक किताब कुरान मजीद, और है ना क्रिश्चियंस के पास एक ही किताब है बाइबल, और फिर हमारे इतने सारे शास्त्र क्यों, तो जाहिर सी बात है मनुष्य का जो हमारे हमारे लोग हैं उनका माइंड तो डाइवर्ट होगा ना कि क्या पढ़े, समझ में नहीं आएगा उनको। तो फिर ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये जो धर्म है ना वो किसी ने बनाया नहीं है, ये इटर्नल धर्म है, इटर्नल जीव का इटर्नल धर्म, सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में क्या देखा गया कि जैसी जैसी मनुष्य की वृत्ति होगी, जैसी जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से वो, आपको कोई बाय फोर्स भगवान की भक्ति नहीं करने के लिए कह रहा है, भगवान ने भगवत गीता में तो बता दिया कि जीवन का क्या लक्ष्य है। लेकिन अब देखो इन सारे शास्त्रों को, जैसे मैं आपको बता रही थी कि सारे शास्त्रों को गौ का रूप दिया कृष्ण ने और उसको दोहा, उसमें से जो दूध निकला है वो क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। अब देखो जो छोटा बच्चा पैदा होता है, जो अभी अभी मतलब अभी अभी नया नया आता है इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन में नया नया प्रवेश करता है, तो छोटे बच्चे की तरह होगा ना। तो छोटा बच्चा देखिए, आप हम थोड़ा सा भौतिक मिसाल लेते हैं, छोटे बच्चे का पूरा जीवन निर्वाह किसके ऊपर होता है, दूध के ऊपर होता है ना, वो इसके अतिरिक्त अगर हम इसको अनाज खिलाते हैं, दाल राइस खिलाओ, कड़ी राइस खिलाओ, रोटी सब्जी खिलाओ, तो छोटे बच्चा जो अभी बॉर्न बेबी है, जस्ट पैदा हुआ है, तो क्या होगा अगर आप उसको खाना खिलाओगे तो क्या होगा? मर जाएगा ना, जिंदा तो नहीं रह सकेगा। उसको अपने जीवन का निर्वाह खाली खाली माँ के दूध के ऊपर रखना पड़ता है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता जो है वो दूध है। भगवान ने ऐसा कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भुक्तो दुग्धम गीतामृतम। तो हम भी जब नया नया मतलब धार्मिक में आते हैं, धर्म ग्रंथ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहिए, क्योंकि वो सार है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो लेकिन फिर भी पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण 18.63 18 अध्याय और श्लोक नंबर 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छेसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें जितना कुछ ज्ञान में गुह्यतरम जितना भी सीक्रेट्स थे ना मेरे पास, वो सारे के सारे सीक्रेट्स तुम्हारे सामने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के रूप में खोल कर रख दिए तुम्हारे सामने, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे तुम बचोगे, किससे तुम्हारे जीवन का नाश हो जाएगा, किस तरह से तुम बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हो और किस तरह से बारम्बार इसमें बचना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्य यानी बहुत सारे सीक्रेट सारे बता दिए हैं, इस पर पूरी तरह से मनन करो, पहले तुम सुन लो, इसके ऊपर सोच लो, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि जो मैंने बोला है वही करो, यथेच्छसि तथा करो, जैसा तुम्हारा दिल करता है। टोटल फ्रीडम भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं, इसलिए बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे जिसका दिल करता है। अब देखो, एक हर इंसान को हाथ दिमाग और दिल ये तीन चीजें मिले ना, यानी कि कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, और है ना हम ज्ञान लेते हैं दिमाग से और फिर दिल से क्या करते हैं हम फैसला लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं यानी कर्म इंद्रियों से, उनको क्या बोलते हैं, कर्मी बोलते हैं। कोई दिमाग से अच्छा काम ले सकता है, हाथ उसके काम नहीं करते ज्यादा, मतलब एक्टिव नहीं होते, लेकिन दिमाग अच्छा काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान योगी बोलते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, हाथ और दिमाग से इतना अच्छा काम नहीं करते, हृदय से ज्यादा काम लेने वाले होते हैं और उन्हें भक्ति योग कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मन मनाम भव मद भक्त, हृदय में मेरा हमेशा हृदय से मेरी भक्ति करो। अब जो भी मेरे लिए कर रहे हो दिल से करो, हाथ से और दिमाग से भक्ति नहीं की जा सकती, भक्ति हृदय से की जाती है। अपनी अब असलियत को जानने, लेकिन भगवान ने कोई आपको बाई फोर्स नहीं कहा है कि आप खाली भक्ति के जरिए, आप कर्मयोग के जरिए भगवान से अपना नाता जोड़ सकते हो, आप ज्ञान योग के जरिए भी अपने भगवान के साथ अपना नाता जोड़ सकते हो और भक्ति योग के जरिए। और श्रीमद् भगवद गीता में ये तीन चीजें बताई गई हैं, कर्मयोग शुरू से पहले अध्याय से लेकर 6th chapter तक जो है वो हमें कर्मयोग के जरिए भगवान से मिलने के बारे में बताया गया। 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय है उसमें क्या बताया गया हमें, भक्ति योग के जरिए भगवान के साथ अपना नाता किस तरह से जोड़ा जा सकता है, और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग के जरिए भगवान के साथ अपना नाता जोड़ने के विषय में बताया गया। नाता तो भगवान से जोड़ना है लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, और बाकी सारे शास्त्र भी क्या है उनमें भी यही चीजें बताई गई है, लेकिन क्योंकि अब हर अब इस संसार में कलयुग में इंसान के पास इतनी उम्र नहीं है कि वो इन सारे ग्रंथों को पढ़ सके और उनके विषय में जान सके, यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, इतने सारे शास्त्र हमें कैसे पता चले। इसलिए इनमें से अगर श्रीमद् भगवद गीता जो इन सब का निचोड़ है उसको ही सही तरह से पढ़ लिया जाए, उसको ठीक तरह से समझ लिया जाए, उसके मुताबिक अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं, उस पर आचरण करते हैं, तो ना सिर्फ इन सारे ग्रंथों का ज्ञान हमें खुद ब खुद आ जाएगा, बल्कि वो हम इस जगत से छूटकर अपनी रियल असलियत को भी पहुंच सकेंगे, यानी कि भगवान के धाम जहां से हम आए हैं वहां तक चले जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान जो है वो ये सारे ग्रंथ नहीं समझ सकता है, इसलिए भगवान ने हमारी आसानी के लिए कि मनुष्य, क्योंकि कलयुग का मनुष्य प्रायण अल्प आयुष्य, उसकी आयु थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा बल्कि कम होती है। 100 साल तो शास्त्र में लिखी हुई है, लेकिन वातावरण इतना दूषित है कि आज हम में से कोई भी 60-70 के बाद जिंदा ही नहीं रहता। अगर जिंदा रहता है तो वो भी मरे हुए जिंदगी, इससे बेहतर है मर जाए, ऐसी जिंदगी होती है। तो फिर अब इतनी उसमें से भी क्या 20-25 साल तो ऐशो अय्याशी में गुजर जाते हैं, बाकी बचता हमारे पास तो थोड़ा समय है, तो इतने सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक परफेक्ट शास्त्र है, जिसलिए और हमारी पहचान है, हम पहचाने जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। तो इसलिए हमें सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का यदि हम अध्ययन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमें सारे शास्त्रों का ज्ञान खुद ब खुद उसके अंदर लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको पूरी सारे शास्त्रों को निचोड़ के ही श्रीमद् भगवद गीता बनाई है। अब यहाँ पर ठीक है, ये तो समझ में आ गया है, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। मुझे थोड़ा सा अगर आप लोग रिटर्न में या ओरल में कुछ बताएंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि कितना मैं समझा पा रही हूँ। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मैंने बता दिया कि वेद पढ़ना जरूरी है, और वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता ही समझनी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आज अगर मार्केट में जाकर हम बोलेंगे ना श्रीमद् भगवद गीता दो, तो पूछा जाएगा कौन सी गीता, तो क्या भगवद गीता। वैसे तो बहुत सारी गीताएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम गिनवाया, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता खाली बोलेंगे ना तो भी बहुत सारी गीताएं। तो क्या श्रीमद् भगवद गीता दो चार अलग अलग है? नहीं, एक दो भगवद गीता नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता 1000 से ज्यादा भगवद गीता जो है वो मार्केट में है। खाली श्रीमद् भगवद गीता भी अगर आप मांगने जाओगे ना, तो 1000 से ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्री की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी भगवद गीता चाहिए, इसको समझाने वाले अलग अलग हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब भगवद गीता लिख रहे थे, तो उससे पहले यानी कि जब श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी, समझो आज से 50 साल पहले भी 742 भगवद गीता, 742 भगवद गीता मार्केट में आ चुकी थी। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि इतनी सारी भगवद गीता पहले से ही है, इतने सारे कन्फ्यूजन पहले से हैं, और आप है ना एक और मसला क्रिएट कर रहे हो, एक और कन्फ्यूजन के, एक और भगवद गीता आप लिख रहे हो। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, आज तक जिन्होंने भगवद गीता लिखी है वो अपने मन घड़त तरीके से लिख रहे हैं, किंतु मैं भगवद गीता अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, भगवद गीता एज इट इज लिख रहा हूँ। यानी ये एक और मसला क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि जितने भी मसले पहले से क्रिएट हो चुके हैं उन सारे मसलों का हल, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता लिख रहे थे, तो वो स्वयं अपनी तरफ से नहीं, वो लिख रहे होते थे और भगवान उनको डिक्टेट कराते थे। अब भगवान उनको बता रहे होते थे कि क्या क्या लिखा, कैसे ऐसे लिखो, इस श्लोक का मतलब ये है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कोई साधारण जीव नहीं थे। श्री प्रभुपाद जी भगवान के शक्ति आवेश अवतार, भगवान के भक्त थे। वो अपनी मर्जी से भगवद गीता को नहीं, भगवद गीता की कॉमेंट्री केवल और केवल शुद्ध भक्त ही भगवद गीता के ऊपर कॉमेंट्री कर सकता है। जैसे ब्राह्मण जो दूसरे होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं, वो भगवान को सही तरह से नहीं समझ सकते, और केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के विषय में जान सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे एक मंदिर है, और उस वो मंदिर को देखकर हर लोग को एक अलग अलग विचार आता है। एक भिखारी जब मंदिर को देखता है तो ऐसा सोचता है, वाह मंदिर आ गया, बहुत भूख लगी हुई है, अंदर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। हालांकि मंदिर खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला गया है, भूखों को खाना खिलाने की जगह नहीं है, लेकिन उसके मन में क्या विचार है कि मंदिर है तो खाऊंगा। अगर उसी मंदिर के साइड से कोई मुसाफिर गुजरता है तो क्या सोचेगा कि वाह मंदिर है, थक गया हूँ, थोड़ी देर विश्राम करूंगा। कोई मुसाफिर खाना नहीं है, वो मंदिर है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में क्या विचार आया है कि मैं अंदर जाऊंगा और थोड़ा रेस्ट करूंगा। इसी यहीं से अगर कोई सिविल इंजीनियर गुजरता है जो कि इमारतें वगैरह बनाता है, बिल्डिंग्स वगैरह, तो देखेगा वाह मंदिर कितना खूबसूरत है, जाके देखता हूँ, कोई नया आइडिया मिलेगा। कलाकार होगा तो वर्क ढूंढेगा। लेकिन इसी तरह से जो जो मंदिर को देखता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से अगर मंदिर को देखकर कोई भक्त गुजरता है तो क्या सोचेगा, अरे मंदिर कितना सुंदर भगवान का भगवान की कृपा हो गई, चलो मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करके सुख प्राप्त करेंगे। उसके मन में केवल यही आएगा कि मैं दर्शन करके आता हूँ। तो मंदिर का सही प्रयोजन कौन जान सकता है? केवल भक्त ही जान सकता है। इसी तरह भगवान का सही प्रयोजन कि भगवान ने भगवद गीता में क्या समझाया है वो भी केवल भक्त ही जान सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 18.55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः, जैसा मैं हूँ यथा रूप में एज इट इज अगर मुझे कोई जान सकता है तो वो केवल और केवल मेरा भक्त है। और आप लोगों की जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि आज तक भले हजारों भगवद गीता मार्केट में आ गई हो, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही भगवद गीता ऐसी है जो एक भक्त ने लिखी है। भक्त का मतलब होता है जिसने पूरा का पूरा, जिसके भगवान के ऊपर पूरी की पूरी श्रद्धा हो, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान, जिसका आचरण वही हो जो वो कह रहा है, वही एज इट इज वो करके दिखा रहा हो, आचार्य होना चाहिए। और सिर्फ श्री प्रभुपाद की भगवद गीता ऐसी है जो कि भक्त ने लिखी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं 4.3 श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम। अर्जुन, तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, और ये रहस्य जो है, ये जो सीक्रेट्स हैं, वो मेरी बात सिर्फ मेरा भक्त ही समझ सकता है। तो जो भक्त ने समझा होगा वही आपको समझा सकता है, क्योंकि इस गीता को समझने के लिए सांसारिक विद्वत्ता नहीं, यानी तपस्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जिसको एजुकेटेड एजुकेटेड बोलते हैं या फिर ज्ञानी बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया केवल भक्त ही इसको समझ सकते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता एक ही, सिर्फ जो श्रभक्ति पाद श्री प्रभुपाद की जो श्रीमद् भगवद गीता है जिस पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एज इट इज, वो ही एक प्रमाणिक शास्त्र है जो कि हमें गीता के सही सही उद्देश्य के बारे में बता सकती है। इसलिए अगर आप लोग श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी भगवद गीता पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब ने अपने अपने मन मुक्ति के हिसाब से या अपने अपने फायदे के लिए श्रीमद् भगवद गीता को लिखा है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो श्री प्रभुपाद ने लिखी है वो जन कल्याण के लिए और भगवान के जो शब्द है वो एज इट इज अब तक पहुंचाने के लिए लिखी है। अब हम भगवान भगवद गीता के मुख्य जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 5 चीजें के बारे में बताया, टोटल 5। टोटल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं, उसमें से 574 श्लोक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हैं। और इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें 5 टॉपिक्स के बारे में बताया। सबसे पहला तो जीव, जो आप हैं, जो हम हैं ना, जीव जो संसार में है उसके विषय में भगवान ने बताया, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ सकते तब तक क्या होंगे पता है? जैसे आप रोड पर जा रहे हो और एक एक इंसान हो, उससे आप पूछो आप कौन हो, तो वो बोलेगा कि मैं ना प्राइम मिनिस्टर हूँ। होता नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो आप क्या समझोगे कि वो क्या है? पागल है, बेचारा है नहीं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो आप जानते हो वो नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो वो क्या है? पागल है ना। तो वो बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आ जाओ जो बैठो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरी स्पीच सुनो और ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो हम लोग वहां पर बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, बोलेंगे पागल है, शोर कर रहा है, छोड़ दो। तो उसी तरह से मनुष्य जो हम संसार में आए हैं, हम सब क्या बोलते हैं, हम कौन है? जैसे अपना अपना नाम लेकर बोलते हैं कि मैं अमरनाथ हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं नरेंद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि आप क्या हो? शास्त्र जो बताएगा वही भगवान क्या कहते हैं कि आप तो शरीर ही नहीं हो। तो इसका मतलब है अगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो हम क्या है? देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान कहते हैं कि आप क्या हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यदि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं तो शास्त्र के लिहाज से तो हम पागल ही होंगे। तो हमें जीव जो है, रियलिटी जो मनुष्य की है या जीव की है, वो हमें इस शास्त्र में बताई जाएगी। पहला टॉपिक है जीव। और दूसरा, अब जीव अगर क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। और अंश किसका है? भगवान का है। तो भगवान के विषय में बताया जाएगा कि भगवान कौन है, भगवान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, भगवान किसको कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनमें से हम किसी को भी चुनकर बोल देते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो श्रीमद् भगवद गीता में बताया जाएगा। और नंबर 3, टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला है जीव, दूसरा है भगवान और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह है कि जीव वास्तव में इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है। प्रकृति में क्या आता है, 24 तत्व आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। ये असल में देखो हम जीव है ना, हम आत्मा है। फिर ये शरीर क्या है, हमारा जो शरीर है ना, अगर हम वो शरीर हम नहीं है तो ये क्या है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या चीजें इसको इसके ऊपर रिएक्ट करती हैं, क्यों चेंजिंग आती है इसमें, इसके विषय में बताया गया। और काल, काल का मतलब होता है समय, कि समय कितना इम्पोर्टेंट है, हमें इस संसार में रहने के लिए कितना समय दिया गया है और क्यों दिया गया है, इसके विषय में बात आती है। और आखिर में है कर्म, कि जीव जो है वास्तव में ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम जीव है, हम प्रकृति के अंदर फंस गए हैं, इस शरीर के अंदर हमें कैद कर दिया गया है। हालांकि जीव जो है वो भगवान का इटरनल हिस्सा है, भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, लेकिन क्योंकि जीव को शरीर के अंदर यानी प्रकृति के अंदर डाल दिया गया है और अब वो उसको समय भी एकदम बहुत थोड़ा दिया गया है, उसके अंदर उसको कैसे कर्म करने चाहिए कि वो वापस से अपने भगवान के पास पहुंच सके। ये 5 चीजों के ऊपर जो है श्रीमद् भगवद गीता में डिस्कस की गई है। और ये चीजें यदि हमें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम इस देह से, बद्ध अवस्था से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर कोई ये सोच सकता है कि इतनी सारी चीजें मैं अगर नहीं समझूं तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं समझनी है, मैं नहीं समझना चाहती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये शास्त्र है, शास्त्र का मतलब होता है कानून। जैसे यहाँ संसार में भी होते हैं ना, गवर्नमेंट के कानून होते हैं, वो कोई ना कोई शास्त्र लिखे होते हैं और फिर हमें उनको पढ़ना होता है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें सजा भोगनी पड़ती है ना। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाने के से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं। अगर रेड लाइट आती है तो रुकना होता है, लेकिन अगर आपने वो शास्त्र नहीं पढ़ा, कानून की किताब में नहीं देखा है कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता है और आप रेड लाइट के टाइम पर भी आगे जाते हो तो फिर ट्रैफिक पुलिस आके आपको चालान करेगा ना कि भाई आपने क्यों रेड लाइट पे क्रॉस किया, और आप बोलोगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे रुकना है, मैंने तो वो शास्त्र किताब कानून की पढ़ी नहीं थी। तो क्या आपको पता नहीं था या आपने पढ़ी नहीं थी, आपको कानून सजा देने से रोक देगा? जैसे अगर किसी को पता नहीं हो कि खून की सजा खून होती है और वो किसी को मार डाले, जान से मार डाले, और उसको पुलिस पकड़ लेगी ना, फांसी देने देगी उसको, लेकिन अगर वो बोले कि भाई मुझे पता नहीं था कि खून की सजा खून होती है या फिर मैंने किसी को मार डाला है तो इसकी इसके बदले में मुझे मार डाला जाएगा, मुझे नहीं खबर थी, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? कानून तो फिर भी उसे सजा देगा। इसका मतलब ये है, इग्नोरेंस इज नॉट मीन्स दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ। अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून से बच जाओगे। उसी तरह यदि हम शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं और फिर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को, यमदूत को बोलेंगे भाई मुझे पता नहीं था कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हम आत्मा है, हमारे पास समय है, इस तरह से कर्म करना चाहिए, ये मुझे पता नहीं था, तो क्या हमें यमराज जो है वो नरक में ले जाने से छोड़ देगा कि भाई हाँ इसको पता नहीं था? सजा तो फिर भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मासूम होना या जाहिल रहना कोई काबिलियत नहीं है। भगवान ने, अब वही देखो, वही गलती, अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको पुलिस वाला नहीं मारता है, या फिर अगर कोई जानवर रोड क्रॉस कर लेता है रेड लाइट पर तो उसको कभी नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जानवर है, वो पशु हैं, उनके पास अक्कल नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं तो फिर हमें ये शास्त्र को पढ़ना चाहिए और शास्त्र को समझना चाहिए। इसी से हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। केवल शास्त्र ही हमें बता सकता है और केवल श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से ही हम ये सारी चीजें जान सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है अगर हम मनुष्य बन गए हैं और फिर भी हम आचरण वही कर रहे हैं जैसे कौन कर रहे हैं, जानवर जैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको शास्त्र कहता है द्वि पद पशु, कि आप दो पांव वाले पशु हो, यानी मनुष्य रूपेण मृगाचरणा से मृत्यु लोक के भूमि बाहर भूता। वो मनुष्य के रूप में दो, उसके पांव तो दो हैं, दुम भी नहीं है, लेकिन मृगहार चरणा जानवरों जैसे आचरण कर रहा है। से मृत्यु लोक के भूमि बाहर भूता, वो इस संसार में इस धरती पर बोझ है। क्यों? क्योंकि वो वही चार कार्य कर रहा है जो मनुष्य कर रहा है, वही कौन से जो जानवर कर रहा है, कौन कौन से, ऐसा शास्त्र में लिखा। महाभारत में 100,000 श्लोक हैं, उसमें से कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु वीर नराणाम। पशु और नर यानी कि जो मनुष्य है वो और जानवर, उनमें चार चीजें बिल्कुल सेम है, वो वही कार्य करते हैं। कौन से? आहार यानी खाना खाना, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी अपने लिए रक्षा, किसी चीज से भय करना और रक्षा का प्रबंध करना, मैथुनम अर्थात सेक्स या बच्चे पैदा करना। ये सारे चार कार्य जानवर भी करते हैं, और यदि मनुष्य इस संसार में आकर यही चार कार्य करता है तो सामान्य है, एकदम इक्वल है, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। फिर डिफरेंस क्या है? आगे कहा धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्माविहीन पशु भी नराणाम। धर्म ही एकमात्र एक अधिक चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है। तो फिर अगर मनुष्य जो है वो यही चार कार्य कर रहा है, धर्म कहां से पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान केवल शास्त्र से पता चलता है, और ज्ञान क्या है? धर्म क्या है? वही ज्ञान है। तो शास्त्र यदि हम नहीं पढ़ते हैं, गीता को यदि नहीं समझते हैं, तो हम वही कार्य करेंगे ना जो जानवर कर रहे हैं। और अगर हम वही कार्य कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। फिर तो इंसान में और जानवर में कोई फर्क बचता ही नहीं ना। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि आज हम हमारे जो सोसाइटी में हैं, कितने लोग हैं जो शास्त्र के हिसाब से अपने, अब देखो धर्म वही है जो शास्त्र में लिखा हुआ। कल हम लोगों ने इस बात को मैंने आपको बताया था 16.13 में कि अगर शास्त्र के हिसाब से आप नहीं कर रहे हो तो वो कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। तो आप आज मुझे बताइए कि आजकल हम इन चार चीजों के अलावा और कौन सा काम कर रहे हैं जो शास्त्र के हिसाब से है? केवल खाना, आराम करना, बचाव करना, बच्चे पैदा करना, यहीं तक सीमित हो गई है मनुष्य मात्र की जीवन। हमारा जीवन इसी पर बस यही कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हम तो ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं, तो कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं ऑफिस जाने के लिए? ऑफिस जाते हैं क्यों? धन अर्जित करने के लिए। और जब उन्हें धन प्राप्त हो जाएगा तो धन से क्या करेंगे? वही चार काम, खाना, आराम करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना और फिर मर जाना। बस कुछ यही कार्य करने के लिए वो ऑफिस जाते हैं ना। अब कुछ आप में से कुछ बच्चे हैं ना, स्टडी करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि भाई दीदी हम तो स्टडी करते हैं? वो कहेंगे कि स्टडी कर रहे हैं मगर क्यों कर रहे हैं पता है? पढ़ लिख कर नौकरियां हासिल करेंगे जिससे धन मिलेगा, या फिर उस धन प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे? अपना भौतिक जीवन बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर लड़कियां हैं तो अच्छी एजुकेशन इसलिए हासिल करेंगे आगे जाकर उनका लाइफ स्टाइल अच्छा बने ना। अल्टीमेटली हम आज जो भी कर रहे हैं वो बस इन चार चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अरे ये सब तो छोड़ो, अगर हम भगवान के पास भी जाते ना तो क्यों जाते हैं बता? यही चार चीजें भगवान से प्राप्त करने के लिए हम बोलते, भगवान हे भगवान अब तो घर ठीक नहीं चल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पूरा धन नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, एक अच्छा घर प्राप्त होना चाहिए। कोई बोलता है मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, कोई बोलता है अच्छे बच्चे नहीं है। बस यही आहार निद्रा, खाना, सोना, अच्छा घर, बच्चे, ये बस यही चीज के लिए मनुष्य जी रहा है। इस चार चीजों के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि आप ये शरीर नहीं हो, उसके बारे में तो कभी सोचते ही नहीं, लानत भरा जीवन गुजारते हैं, खुद भी और अपनी संतान को भी यही प्रेरणा देते हैं कि तुम भी जीना जानवरों की तरह जैसा मैंने जिया है। बस यही चार चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते करते एक दिन मर जाते हैं। आप देखिए, आप मुझे दोष ना देना, ये शास्त्र की बात है, क्योंकि सिर्फ महाभारत में नहीं, बहुत सारे दूसरे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ये शान विद्या न तपो न दानम चीलम न गुणा न धर्मा। जो धर्म नहीं करते हैं, जो शास्त्र को अध्ययन नहीं करते हैं, जो धर्म को समझते नहीं है, अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार नहीं चलाते हैं, वो तो जानवर ही है, पशु वीर नराणाम। मतलब जब तक हम धर्म के प्रति सुनकर, शास्त्र को सुनकर अपने जीवन में उसको नहीं उतार लेते हैं तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से भगवद गीता को सुनना है, क्योंकि इसी से हम अपने जीवन को जानवरों से अच्छा, अच्छे तरीके से मनुष्य की तरह, जैसे भगवान ने बताया है, उस तरीके से गुजार सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो समझ में ना आए तो आप जरूर पूछा कीजिए, और जो समझ में आए तो भले आप थोड़ा ही सही, लेकिन मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना आपको समझा पा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।